अब इसके बाद हजरत मूसा अलैहि सलाम का किस्सा है, आइए देखते हैं। फिर इन कौमों के बाद जिनका जिक्र ऊपर किया गया, हमने मूसा अलैहि सलाम को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसकी कौम के सरदारों की तरफ भेजा, मगर उन्होंने भी हमारी निशानियों के साथ जुल्म किया। बस देखो इन मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ। याद रखिए ये भी बात बड़ी अहम है, अल्लाह की तरफ से जो आयतें या निशानियां आती हैं ना, उनको जब कौम छोड़ती है तो अल्लाह किसी फिरौन को उनके ऊपर मुसल्लत कर देता है। माजी के मुसलमानों के साथ यही हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है, फिरौन मैं कायनात के मालिक की तरफ से भेजा हुआ आया हूँ, मेरा मनसब यही है कि अल्लाह का नाम लेकर कोई बात हक के अलावा ना कहूँ। दुआ कीजिए अल्लाह हमें भी इसकी तौफीक दे, अल्लाह के नाम पर कोई मन घड़त बातें ना करें। दीन के साथ ये एक बहुत बड़ा फितना होता है कि इंसान दीन में अपनी मर्जियां पेश करके लोगों के अंदर बड़ा बनना चाहता है। मैं तुम लोगों के पास तुम्हारे रब की तरफ से सरीख दलील मामूरियत लेकर आया हूँ, यानी मैं खुद नहीं नबी बना, मुझे अल्लाह ने नबी बनाया है, बस तू बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दे। हजरत मूसा की जिंदगी के दो बड़े मकासद थे, पहला सदियों की गुलाम बनी हुई कौम को आजाद करवाना, इस पे भी आगे हैं, और दूसरा मकसद तौरात का नजूल। वो दोनों चीजें हम देखेंगे अभी इंशाल्लाह। फिरौन ने कहा, अगर तू कोई निशानी लाया है तो अपने दावे में सच्चा है तो पेश कर। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका और यकायक वो एक जीता जागता अजदहा था। इसने अपनी जेब से हाथ निकाला और सब देखने वालों के सामने वो चमक रहा था। इस पर फिरौन की कौम के सरदारों ने आपस में कहा, यकीनन ये शख्स बड़ा माहिर जादूगर है, तुम्हें तुम्हारी जमीन से बेदखल करना चाहता है। या फिर देखिए इल्जामात की बौछार, मूसा ने आके कोई ऐसा जुमला बोला, लेकिन मूसा को देखकर उस दौर के हुक्मरानों को फिक्र ये लग गई कि अगर मूसा का दीन आम हो गया तो हमारे इक्तदार के दिन गिने गए। यही बात यहां समझ आ रही है। अब कहो क्या कहते हो। फिर इन सब ने फिरौन को मशवरा दिया कि इसे और इसके भाई को इंतजार में रखिए और तमाम शहरों में हर कारे भेज दीजिए कि हर माहिर फन जादूगर को आपके पास ले आए। चुनाचे जादूगर फिरौन के पास आ गए। उन्होंने कहा, अगर हम गालिब रहे तो हमें इसका सिला तो जरूर मिलेगा ना। यहां देखिए अब शख्सियत पलटती हुई दिखेगी। आए जादूगर, काफिर और लालची, तीन बड़े जुर्म हैं उनके। कुफर पे थे, जादू जो कि है सीखना सिखाना ही हराम है, और तीसरी बात है कि लालच है। आते ही फिरौन को कहते हैं, आज अगर हम जीत गए तो हमें इसका बदला क्या मिलेगा। फिरौन ने जवाब दिया, हाँ और तुम मुकर्रबे बारगाह हो गए, यानी मैं तुम्हें अपने सेक्रेटरी बना लूंगा, तुम मेरे करीबी हो जाओगे, मेरे पर्सनल्स बन जाओगे, यानी तुम्हें बड़े बड़े ओहदे दे दूंगा। फिर उन्होंने मूसा से कहा, तुम फेंकते हो या हम फेंके। मूसा ने जवाब दिया, तुम ही फेंको, ये है तमाद। हम कहते पहले मैं बात सुना लूं, फिर पता नहीं गलत होगा, मेरी बात सुन ले पहले। नहीं, हक है, गूंगे बंदे का भी हक इंशाल्लाह दिल पे आएगा। तो मूसा को सच था, कहा तुम जो करना चाहो कर लो। हालांकि टॉस मूसा ने जीता है, लेकिन खेलने की बारी उनको दे रहे हैं। उन्होंने जब अपने अंचर फेंके तो निगाहों को मसहूर और दिलों को खौफ सदा कर दिया और बड़ा ही जबरदस्त जादू बना लाए। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को इशारा किया, अब फेंको अपना सा। उसका फेंकना था कि आन की आन में वो उनके इस झूठे तिलसम को निगलता गया। फवकल हक व बतलमा कानू यामलून, इस तरह जो हक था वो हक साबित हुआ और जो कुछ उन्होंने बना रखा था वो बातिल होकर रह गया। यहां जरा सा समझिए, मूसा का असा मूसा के हाथ में आकर मौजजा बनता था। आज अगर वो ऐसा हो, और बाज लोग कहते हैं है, कोई भी जाके उसको पकड़ेगा ना वो सांप बनेगा और ना उसके साथ दरियाओं में रास्ते बनेंगे। अल्लाह के नबी सल्लम का मौजजा ये कुरान है। मूसा ने ऐसा फेंका, जादूगरों की हालत बदल गई। आज हम इस कुरान को आम करें, कई नॉन मुस्लिम्स के दिल बदल जाएंगे। ये एक लिविंग मिरेकल है। लोग कहते हैं हाय मूसा को इतने अच्छे मौजजे दिए, कभी हमारे नबी को भी दिए होते तो मक्का वाले सारे ही मुसलमान होते। नहीं, ये कुरान ऐसा खूबसूरत मौजजा है जो रहती दुनिया तक है। फिर सवाल ये कि आज ये है तो अमल क्यों नहीं हो रहा, वो हाथ नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना, जरबे कलीम नहीं है, ऐसा है पर जिस तपाक से मूसा ने वो जरब लगाई थी वो नहीं है। आज ये मौजजा मौजूद है, वो हाथ नहीं है, और अल्लाह वो हाथ पैदा कर दे। अल्लाह ताला हमारे ईमान ऐसे मजबूत कर दे कि इस कुरान को जब लेकर निकले ये लोगों के दिलों पे असर करे। फिरौन और उसके साथी मैदान मुकाबला में मगलूब हुए और फतेहमंद होने की बजाय उल्टे जलील हो गए। जादूगरों का हाल ये हुआ, गोया किसी चीज ने अंदर से इन्हें सजदे में गिरा दिया। ये है पर्सनैलिटी मेरे आपके लिए। अंदर से किस चीज ने गिराया? वही चीज जिसने निजाशी के दरबारियों की आंखों से आंसू निकाल दिए थे, और वो जुमला अगर आपको याद हो, मिम्मा अरफू मिनल हक, हक को जो पहचान लेता है ना, वो फिर अपनी जगह पे नहीं जमता। इनको पता चल गया कि हमसे बड़ा जादूगर कौन है, ये मूसा का ऐसा जादू नहीं हो सकता। दैट मीन जो हक कहते हैं ना कि हीरे की कीमत जौहरी जाने, हम पेशा को पता होता है कौन कैसा है। किसी की कोई जितनी मर्जी तारीफें करें, उसी फील्ड का शख्स जब तक उसकी तारीफ ना करे उसको माने ही ना। बिल्कुल इसी तरह उनको समझ आ गया, चूंकि तासुब नहीं था, चूंकि तकबुर नहीं था, ईमान आ गया। ये सारा मंजर तो मिस्र का आधा शहर देख रहा था, और फिरौन ने बड़ा महल बनाकर वहां ये मैच देखना था, उसको क्यों नहीं हिदायत मिली? दिल में बड़ाई का एहसास था। तो लिखिए, आज भी इस कुरान को पढ़ने के बाद सिर्फ वही बदलेगा जो आजजी के साथ सुनेगा, जो खुद को बदलने के लिए सुनेगा, और जो इस तकब्बुर के साथ सुनेगा। मुझे बहुत आता है, मैं तो बहुत पढ़ गई हूं, मैं तो बहुत जान गई हूं, मेरे अंदर तो बहुत ही कुछ हिकमतें आ गई हैं, उसको इससे फायदा नहीं होगा। और कहने लगे, हमने मान लिया रब्बुल आलमीन को, उस रब को जिसे मूसा और हारून मानते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह हमें ऐसा ईमान नसीब कर दे। इन 6,000 से ऊपर आयतों में कोई एक आयत इस साल हमारे दिल को भी झुका दे, हम भी टूट जाएं, हमारी जुबान पे भी ये लफ्ज आ जाएं कि आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, शौरी ईमान में हमारा ईमान बदल जाए। काला फिरौन आमन्तुम बिही क़ब्ल अन आज़ना लकुम, फिरौन ने कहा, अब उसकी अन्ना पे चोट पड़ी, मेरे बंदे मेरे बुलाए हुए अब मूसा की तरफ हो गए, ये भी बड़ा खौफ आता है लोगों को। याद रखिए, सियासत में इस चीज की बड़ी अहमियत होती है। मेरी पार्टी के लोग दूसरी पार्टी में क्यों चले गए? मेरा गिरोह था, दूसरे गिरोह से क्यों मिल गया? दीन में ये नहीं चलता। फिरौन सियासी बंदा था, मूसा अलैहिस्सलाम एक मजहबी रहनुमा थे। मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जो लोग आ रहे थे, ना तो वो लालचों से आते थे, जैसे आप देखें ना सियासत में लोग पैसे दे दे के बंदे खरीदते हैं, 100-100 रुपया दे के वोट डलवाते हैं। दीन में ऐसा नहीं होता। आप किसी को तोहफे दें, इनाम दें, गिफ्ट दें, कंधे थपथप पाएं ताकि वो आपके साथ जुड़े रहें, बेकार होंगे और ही ज्यादा पता नहीं क्या कुछ जमा हो जाएगा। वो बंदा दीन के साथ जुड़ा रहता है जो हर किस्म की मुराद और हर किस्म के फायदों से बेनियाज होकर सिर्फ इसलिए दीन के साथ जुड़े कि ये अल्लाह ने मुझे ऑनर दी है, अल्लाह के नाम के लिए जुड़ा हूं। बीच में जब ये दुनिया की चीजें आने लगती हैं ना, तो याद रखिए पता ही नहीं चलता कि कौन किसके लिए आया था। यही बात यहां आपको समझ आ रही है। मूसा ने कोई पैसे नहीं दिए जादूगरों को, मूसा ने कोई लालच नहीं दिया, आओ तुम्हें वजीर और मशीर और तुम्हें कुछ बनाऊंगा, लेकिन चल पड़े। हक लाइए अपने अंदर, अपने अंदर सदाकत लाइए, वल्लाही अल्लाह सारे शहर की क्रीम आपके साथ जोड़ देगा। और अंदर खोट है, अंदर गंदगी है, अंदर दिल में कुछ और बाहर कुछ है, जो मुखलस हैं चार वो भी चले जाएंगे। याद रखिएगा, दीन के साथ किसी हुब्बे जाह और हुब्बे माल को नहीं ला सकते आप। वरना अल्लाह के नबी को कहा जाता, कहते थे अल्लाह के नबी को लोगों ने क्या कहा था आप सब जानते हैं, मैं जब मिसाल दूंगी। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू चाहता क्या है? तुझे सरदार बनना है, हम तुझे सरदार बना देते। तू शहर की किसी खूबसूरत औरत से शादी करना चाहता है, कर देते हैं। और अगर तू चाहता है कि तुझे लीडर बना ले, माल दे दे, तो जो चाहता है बना। उनको समझ ही नहीं आती थी इस बंदे को चाहिए क्या। आज भी नहीं लोगों को समझ आई आज तक कि दीन वालों को चाहिए क्या होता है, उनको क्या चाहिए? जिनके पास रब है, रब का नाम है, उन्होंने बंदों से मांगना है। तो यही बात आपको इस वाक्य से समझ आ रही है। फिरौन की पार्टी को छोड़कर मूसा की पार्टी में कहने की बात सुना रही हूं, दाखिल हो रहे हैं जादूगर किसी लालच के साथ नहीं। ये लालच है कि इस बंदे ने जिंदगी का मकसद समझा दिया। और याद रखिए, जिसकी नजर मकसद पे रहेगी और जिसको एक दफा जिंदगी में यह एहसास हो जाए कि इस मोड़ से मुझे हिदायत मिली थी, इस किनारे से मैंने जन्नत का रास्ता पाया था, सारी जिंदगी उस दर पे सर झुकाए और सजदे में सर रख के फिर भी हक अदा नहीं होता। लेकिन जो मुहसिनों का एहसान नहीं मानता, जो हिदायत की तरफ बुलाने वालों की कदर नहीं करता, याद रखिए फिर उसको हिदायत भी नहीं मिलती। जो औलाद अपने माँ बाप की कदर ना करे, बताएं कभी उनको भी खैर मिली? तो यहां फिरौन के इस किस्से पे देखिए कि फिरौन अब अपने ही बंदों पे शक कर रहा है। ये भी एक जुमला लिख ले, जहां फिरौनियत होगी, जहां सियासत होगी, वहां हमेशा शक होगा। अपने ही साथियों पर शक, एक दिन शक एक दिन खुश, एक दिन नाराज, एक दिन राजी। अभी कह रहे तुम बड़े अच्छे हो, तुम्हें मैं अपना मुकर्रब बनाऊंगा। अब सुनिए, फिरौन ने कहा तुम इस पर ही मान लिया कबल इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं। यानी एक तो इजाजत चाहिए होती है। हर दौर के फिरौन की यही साजिश रही कि मुझसे पूछ कर तुम खुदा चूज करो, तुम्हें कौन सा खुदा चाहिए। यकीनन ये खुफिया साजिश थी, ये भी इल्जाम लगा रहा है, जो तुम लोगों ने इस दारुल सल्तनत में की है ताकि इसके मालिकों को इक्तदार से बेदखल कर दो। यानी आप देखिए शक भी कर रहे, इल्जाम तराशियां भी कर रहे। अच्छा तो इसका नतीजा अब तुम्हें मालूम हुआ जाता है। लिखिए थ्रेटनिंग, थ्रेट भी कर रहे मुसलमानों को, मैं तुम्हारे हाथ पर मुखालिफ सिमतों से कटवा दूंगा और इसके बाद तुम सबको सूली पर चढ़ाऊंगा। वल्लाही अल्लाह ना करे कभी ये वक्त मुसलमानों पे आज के दौर में आए, पता नहीं कहां कहां घुस जाएंगे पना लेने के लिए। उन्होंने जवाब दिया, उनका जवाब मेरे आपके लिए भी एक रोल मॉडल है। और ये दुआ भी है आज के इस बारे की, रब्बना फ़रिग़ अलैना सब्रम वतवफ़ना मुस्लिमीन। बहरहाल हमें पलटना तो अपने रब की तरफ है, ये है वापसी का एहसास जो इस जिंदगी की कीमत लगवाता है। फिर आप इसको इवेल्युएट करते हैं तो जिस बात पर हमसे इंतकाम लेना चाहता है वो इसके सिवा कुछ नहीं कि हमारे रब की निशानियां जब हमारे सामने आ गईं तो हमने इन्हें मान लिया। ऐ रब हम पर सब्र का फैजान कर दे और हमें दुनिया से उठा तो इस हाल में कि हम तेरे फरमा बरदार हों। हुब्बे माल खत्म, हुब्बे जा खत्म, क्योंकि रब की तरफ जाने का एहसास पैदा हो गया। अल्लाह करे कि आज हमारे अंदर भी यही आ जाए। और आप देखिए, आप जब इस किरदार के हामिल हो जाएंगे, इनको बनाइए आज अपने लिए रोल मॉडल। ये रिवर्ट्स हैं, ये कन्वर्टीज हैं, ये कल तक फिरौन के साथ लगे उसको खुदा बना रहे थे, आज मूसा के पीछे क्यों लग गए? इनको हक समझ आ गया, इनको सच्चाई समझ आ गई। दुआ कीजिए अल्लाह हमें सच्चाई समझा दे। फिरौन से उसकी कौम के सरदारों ने कहा, क्या तू मूसा और उसकी कौम को यूं ही छोड़ देगा? अब ये देखिए, ये वो जिसको कहते हैं मुफ्त मशवरे देने वाले, हर डिक्टेटर के पास ऐसे ही मुफ्त मशवरे देने वाले होंगे जो सिर्फ अपनी गद्दियां पक्की करने के लिए कभी चापलूसियां करते हैं और कभी ऐसी साजिशों के जाल बुनते हैं। क्या साजिश होगी? फरमाया, क्या तू मूसा और उसकी कौम को यूं ही छोड़ देगा कि मुल्क में फसाद फैलाएं और वो तेरी और तेरे माबूदों की बंदगी छोड़ बैठे? फिरौन ने जवाब दिया, मैं इनके बेटों को कत्ल कराऊंगा और इनकी औरतों को जीता छोड़ दूंगा। हमारे इकतदार की गिरफ्त उन पर मजबूत है। दोबारा वही खेल खेलने लगा जो मूसा की पैदाइश के वक्त पे हो रहा था। ये भी मुसलमानों पर वक्त आए, उनकी औलादों को कत्ल किया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, इसको हाईलाइट कीजिए, इस्ताईनु बिल्लाहि वस्बिरो। ये दुआएं मांगिए, क्या? अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो। जमीन अल्लाह की है, अपने बंदों में से जिसको चाहते इसका वारिस बना देता है और आखिरी कामयाबी उन्हीं के लिए है जो, आप सब मिलके पढ़ें, जो उससे डरते हुए काम करें। दोबारा आगे, पहले आया यखाफुन, यहां क्या आ गया? मुत्तकीन। फिर बात अल्लाह आपको मुझे समझा रहा है, मुसलमानों की मदद अल्लाह ने तब करनी है जब उनमें अल्लाह का खौफ आएगा और जब उनमें अल्लाह का तकवा आएगा। अल्लाह हमें अपना तकवा अता कर दे। उसकी कौम के लोगों ने कहा, तेरे आने से पहले भी हम सताए जाते थे और अब तेरे आने पर भी सताए जा रहे हैं। इसने जवाब दिया, करीब है वो वक्त कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे और तुमको जमीन में खलीफा बनाए, फिर देखिए कि तुम कैसे अमल करते हो। अच्छी लीडरशिप, मोरेल बुलंद कर रहे हैं। आज ऐसे लीडरों की जरूरत है मुसलमानों को, जो हिम्मतें तोड़े नहीं, वो उनकी हिम्मतें बनाएं। और देखना तुम्हारा मुस्तकबिल कितना रोशन है, देखना तुम्हें अल्लाह ने कितनी मदद देनी है। क्योंकि अच्छा लीडर हमेशा लोगों को प्रवोक करता है, उभारता है, वो कुछ नहीं बिगड़ा अभी और कुछ है, फिक्र नहीं करो। और मूसा अलैहिस्सलाम इसकी बेहतरीन तस्वीर थे, लेकिन इसमें एक इशारा भी है। आज के बनी इसराइलियों, तुम दबे हुए हो तो अल्लाह से जुड़े हुए हो तो अल्लाह मदद कर रहे हैं। आगे देखिए कि दुश्मन डूब जाएगा अल्लाह की मदद से, लेकिन इसी कौम को जब खिलाफत और इमारत मिलनी है तो इन्होंने फिर वो मस्तियां करनी है कि फिर अल्लाह की पकड़ का शिकार। ये कौमों की जिंदगी की कहानी है। आज तक हम भी 70 साल से मस्तियां ही कर रहे हैं। ये तो अल्लाह का रहम है कि हमारा मुल्क कायम है। 70 साल से आपने एक जमीन को पाक करने की नीयत की थी, आज तक आप वहां इस्लाम का निजाम तक नाफिज नहीं कर सके, कई चीजों से उसको पाक नहीं कर सके। क्या अल्लाह नहीं देख रहा आज मुझे और आपको, क्या हम क्या अमल कर रहे हैं? ये जुमला पाकिस्तानियों के लिए है, नाम लेकर इसलिए कहती हूं कि मैं खुशी से समझती हूं कि मैं पाकिस्तानी हूं। ये हम सब के लिए है कि तुम्हें पाकिस्तान जैसी दौलत देकर अल्लाह अब देख रहा है कि तुम्हारे करतूत क्या हैं, तुम करते क्या हो। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे। وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ। एक तरफ मुसलमानों की मदद अल्लाह करता है, दूसरी तरफ उन पर जुल्म करने वालों की पकड़ करता है। ये अल्लाह की सुन्नत है। आप और मैं मुसलमान बन जाए, बाकी जो काम हम नहीं कर पाते वो अल्लाह खुद करता है। कैसे? हमने फिरौन के लोगों को कई साल तक कहत और पैदावार की कमी में मुबतला रखा कि शायद इनको होश आए। इस पे गौर कीजिए। मगर इनका हाल यह था कि जब अच्छा जमाना आता तो कहते हम इसी के मुस्तहिक हैं, और जब बुरा जमाना आता तो मूसा और इसके साथियों को अपने लिए फाले बद ठहराते। हालांकि दर हकीकत इनकी फाले बद तो अल्लाह के पास थी, मगर इनमें से अक्सर बेइल्म थे। देखिए जाहिल कौम, जब तरक्की मिलती थी कहते थे हम बहुत अच्छे हैं, जब जरा कोई आफत आती मूसा को बुरा कहते। लीडर्स पे तनकीद करने वाले ऐसे ही होते हैं। क्यों? उनको क्या लगता है, जो गलत पॉलिसी, जो गलत तरीका, जो गलत नतायज निकले, ये लीडर्स की कमी है। जैसे आज हम रोते हैं हर बात में सियासतदानों के गुनाह माफ नहीं करवाते, बिकॉज दिस बिकॉज दैट। भाई आप ठीक हो जाइए बेचारे, वो चार छह लोग क्या करेंगे। तो याद रखिए, जैसी रियाया होती है वैसे सरदार होते हैं। आमालुकुम ओ मालुकुम, हदीस का खुलासा है, तुम्हारे आमाल तुम्हारे हाकिम बन जाते हैं। अच्छे आमाल करो अच्छे हुक्मरान, बुरे आमाल करो बुरे हुक्मरान। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। हालांकि दर हकीकत इनकी फाले बद तो अल्लाह के पास थी, मगर इनमें से अक्सर बेइल्म थे। इसको भी हाईलाइट करें। क्या आज हमारी कौम का मसला बेइल्मी नहीं है? वक्सरहुम ला यालमुन, इल्म की कमी बंदे को यहां तक पहुंचा देती है। उन्होंने मूसा से कहा, तू हमें मसहूर करने के लिए कोई निशानी ले आए, हम तो तेरी बात मानने वाले ही नहीं है। आखिरकार हमने इन पर तूफान भेजा, टिड्डी दल छोड़े, सुसरियां फैलाई, मेंढक निकाले और खून बरसाया, ये सब निशानियां अलग अलग करके दिखाई, मगर वो सरकशी किए चले गए, वो बड़े मुजरिम लोग थे। देखिए अल्लाह ऐसे इंतकाम लेता है, फिर आसमानी आफतें भेज देता है। सात किस्म के नहीं बल्कि नौ किस्म के अजाब आए थे फिरौनियों पे, और एक एक हफ्ते के फर्क से कहते हैं। आप जरा सोचिए, पूरे शहर में मेंढक आ गए, गवर्नमेंट को तोड़ ही नहीं कर पा रही, सुसरियां फैल गई, पानी के चश्मे खून के बन गए, कितनी बड़ी ये सजा थी। इसके बावजूद मगर वो सरकशी किले किए चले गए, वो बड़े ही मुजरिम लोग थे। जब कभी उन पर कोई बला नाजिल होती तो कहते हैं मूसा तुझे अपने रब की तरफ से जो मनसब हासिल है इसकी बिना पर हमारे हक में दुआ कर। देखिए दुआ फिर दीनदार से ही करवाते हैं। आज भी लोग लतीफे मौलवियों को बनाते हैं, बुराई उनकी करते हैं, और जब मौका आता कहते हैं मौलवी साहब जरा दुआ तो कर दें, जरा आइए छह बच्चों को लेकर हमने दुआ करानी है। अगर अब के तू हमसे ये बला टलवा दे तो हम तेरी बात मान लेंगे और बनी इसराइल को तेरे साथ भेज देंगे, मगर जब हम इन पर से अपना अजाब एक वक्त मुकर्रर तक के लिए, जिसको वो बहर हाल पहुंचने वाले थे, हटा लेते तो वो यक लख्त अपने अहद से फिर जाते। जरा सा मुहासबा करें, क्या आज उम्मत का ये हाल नहीं है? मुश्किल आती है, खूब रोते धोते तौबा तिल्ला करते, फिर वापस। आपको याद होगा एक बड़ा जबरदस्त जलजला आया था आज से कुछ साल पहले बालाकोट में। कहने वालों ने कहा कि उसके बाद मस्जिदों में नमाजियों की तादाद बढ़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अब क्या हुआ? उसके असरात खत्म। यही कौमों का हाल है, जब मुश्किल आती है सीधे हो जाते हैं, मुश्किल टलती है फिर अकड़ने लगते हैं। तब हमने इनसे इंतकाम लिया और इन्हें समंदर में गर्क कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमारी निशानियों को जुटलाया था और इनसे बेपरवाह हो गए थे। और उनकी जगह हमने इन लोगों को जो कमजोर बनाकर रखे गए थे सरजमीन के मशरिक और मगरिब का वारिस बना दिया, जिसे हमने बरकतों से मालामाल किया था। इसी तरह बनी इसराइल के हक में तेरे रब का वादा खैर पूरा हुआ। ए अल्लाह, आज मुसलमानों के साथ भी वादा खैर पूरा कर, लेकिन उससे पहले हमें अपनी इसलाह करनी पड़ेगी। याद रखिए, किरदार साजी का आज अगर पहला दिन हो हमारा बींग अ नेशन, उम्मत मुस्लिमा के नाते अल्लाह की मदद का भी ये पहला ही दिन होगा। क्यों अल्लाह की मदद आई? क्योंकि उन्होंने सबर से काम लिया। ये कौन सा सबर है? हुब्बे माल से सबर। माल के पीछे मशीन बन के नहीं भागना, खुद पूछिए। खास तौर पे मर्दों का तो ये एक क्वेश्चन होना ही चाहिए, क्या मैं सारा दिन माल के पीछे नहीं भागता? कितनी नमाजें मेरी चली जाती हैं सिर्फ माल कमाने लेने देने के लिए, और औरतें जो है वो उसको खर्च करने में नमाजें छोड़ देती हैं। खुद से पूछते हैं शॉपिंग में, ग्रोसरी लेने में कितनी नमाजें जाती हैं। तो सब्र चाहिए, थोड़ा सा ठहरिए, थोड़ा सा अपने ऊपर बर्दाश्त कीजिए। ना मिली आज लस्सी तो क्या होगा, कोई ज़रूरी इस वक्त गाड़ी निकाल कर आप लस्सी लेने चल पड़े। ना बनी आज फ्रूट चाट, और बन गई अगर उसमें नहीं डला एक फल तो क्या होगा। याद रखिए जो उम्मत ये सब्र नहीं कर पाती ना, खाने पीने में कसर लग गई तो बस रोना ऐसे आता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। ये सब्र चाहिए। अल्लाह कौमों को ऐसे ही इज्जत नहीं देता। पीछे पड़ चुके बनी इसराइल को मनो सलवा खिलाया था कि चलो तुम्हें मैं वन डिश देता हूँ, तुम काम करो। उन्होंने काम तो नहीं कर सकते, हमें तो खाने चाहिए रंग बिरंग के। अल्लाह ने कहा जाओ दूरी बतल मुजिल मस्कना। आज उम्मत मुस्लिमा भी जायकों की हरीस हो गई। खाने पीने हमारे दिल को खुश रखते हैं, हमारा मिजाज अच्छा रहता है। एक दिन जरा मैं आपको ही कहूँ, मुश्किल बातें दे दूंगी किसी दिन की ट्रिप में, कुछ नहीं बनाना इफ्तारी में। देखिए फिर सब्र कौन करता है। हमने फिरौन और उसकी कौम का वो सब कुछ बर्बाद कर दिया जो वो बनाते और चढ़ाते थे। जब मुसलमान सब्र करता है ना, तो अल्लाह कुफर की सारी तरक्कियां उसके हाथ में पकड़ा देता है। आपको अल्लाह की बात समझ आ रही है ना, कितने खामोश इशारे हैं, कितना सिंपल काम है। आप किसी से क्यों लड़ते हैं, आप किसी के साथ क्यों जंगों की बातें करते हैं, आप किसी के कानून और लॉज पर क्यों तनकीद करते हैं। एक काम कीजिए, अपना ताल्लुक अल्लाह से ठीक कर लें। आज पूरी दुनिया के मुसलमान अगर अल्लाह से अपने ताल्लुक ठीक कर लें, किसी की जरूरत नहीं उससे बात करें। देखिए मिसाल दे देती हूँ, शौहर बीवी का अपना ताल्लुक अच्छा हो ना, तो घर वाले कुछ नहीं कर सकते। ससुराल में इधर उधर नंदे सास बाबजे ये वो जो भी कोई रिश्ते होते हैं ना, वो जितना मर्जी उस घर को तोड़ना चाहें, शौहर बीवी का ताल्लुक अच्छा नहीं टूटेगा इंशाल्लाह। अब ये तो छोड़ दीजिए, छोटा सा घर है ना, अल्लाह के साथ अगर आपका मेरा ताल्लुक ठीक है, अल्लाह मानी अली मात वला मोती अली मनात, अल्लाह कोई दे नहीं सकता जो तू ना देना चाहे, कोई ले नहीं सकता जो तू ना छोड़ना चाहे, वला यनफौ जल जद्दी मिन कल जद। ये सबक इस रमजान में उम्मत मुस्लिमा पढ़े, और मैं पढ़ू, मैं उम्मत मुस्लिमा की एक फर्द हूं। मेरा घर इस उम्मत का एक यूनिट है, मैं कींट हूं, मेरे बच्चे मेरे माँ बाप मेरे भाई बहन, ये रूह आप औरतों ने अपने बच्चों को देनी है। फिर देखिए जरा कैसे उम्मत के इस पौधे पे बहार आती है जो इस वक्त से मुरझाया हुआ। ये कोई उम्मत है? डीली डाली रोई धोई उम्मत, तड़पती हुई उम्मत है। यकीन करें इसकी सिसकियां देखिए। हम जाहरी तौर पे कामयाब है जाती जिंदगी में, लेकिन इज्तमाही तौर पे हम नाकाम है। जिसका दिल चाहता है हम पे बात कर जाता है, ठोकरों में आई हुई उम्मत है। सिर्फ जरूरत है सब्र की। हुब्बे जाह को जरा कम कीजिए। देखिए मेरे बैंक में 100 है, 1000 है, 1 लाख है, या 1 करोड़ है, मिलनी तो मुझे 2 वक्त की रोटी है ना। क्या मैं रोटी को बढ़ा लेती हूँ, क्या मैं सोना खाने लगती हूँ, क्या मैं अब डायमंड खाने लगूंगी। मेरे बैंक में अगर मेरी जिंदगी की जरूरियात पूरी करने के लिए 1 हफ्ते महीने का सामान है, मैं बादशाह हूं। तो मैं अपनी जिंदगी इस रोग में लगा दूं कि नस्लों की नस्लों के लिए मुरब्बे जमीन छोड़ जाऊं और करोड़ों छोड़ जाऊं। तो देखिए जब मुसलमानों पे जवाल आया था, एक खलीफा था, जब हुक्मरान बनाया गया तो दुश्मन ने कब्जे में कर दिया, खूब भूखा रखा, और जब खाने की प्लेट भेजी, कपड़ा उठाया तो सोने चांदी के तश्तर, बड़ी बड़ी प्लेट जिसमें हीरे मोती रखे हुए। कहने लगे इसको मैं क्या करूं, मुझे तो खाना चाहिए। कहा खलीफा काश ये बात तुझे उस वक्त समझ आती जब तू खलीफा था, ये सोने चांदी ने तेरा पेट नहीं भरना। बड़े घर हैं और अकेले हैं, क्या करना है उस घर को, दौलत है। आज मुसलमान कहने पे मजबूर हो गए हैं कि हमारी पाकिस्तान की जायदादों से हमारे बच्चों को कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ऑप्शन आती रहती हैं, किसी को भेजे वहां काम करे मदरसा बनवा ले, वो घर है अपने नाम लगवा लीजिए। हमारे बच्चे कहते हैं हमने नहीं जाना पाकिस्तान, और ये सच है। ये पैसा जो आप और मैं अपने बच्चों के लिए जमा कर रहे हैं ना, अगर हमने उनको इंसान नहीं बनाया, अगर उम्मत का दर्द नहीं दिया, अल्लाह का बंदा नहीं बनाया, उनको इससे कोई कशिश नहीं। आप देखिए पहली औरतें कितना सोना पहनती थी, आज मैं ऐसी शादियां देखती हूँ, बच्ची कहती है 1 तोला सोना नहीं लेना मैंने, मैं नहीं पहनती, रखो तुम। नहीं समझे, हमारी नस्ल को इन मादी चीजों से कोई इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी पिछली नस्लों को ज्यादा थी। उनको जमीनों से क्या लगे, आप उनको एक किरदार बनाकर छोड़ें, आपकी कब्र ठंडी रहेगी अगर आपने अपने बच्चों से ये हुब्बे माल और हुब्बे जान निकाल कर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत डाल दी, और अल्लाह ताला हमसे ये खिदमत ले ले। और हमने फिरौन और उसकी कौम का वो सब कुछ बर्बाद कर दिया जो वो बनाते और चढ़ाते थे। उनकी भी तरक्की उनके हाथ में रह गई जब अल्लाह ने उनकी मदद की। بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے۔ لکیے اور ہائی لائٹ کیجیے، یہ سوچ دیجیے اپنی نسلوں کو، یہ جو وینیر ہے نا، وینیر سمجھتے ہیں، اوپر ایک کوٹنگ ہوئی ہوتی ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ نیچے مٹی کی دیوار ہے نا، آپ اس پہ گولڈن پیپر لگا دیں، یہ جو اوپر پیپر لگے ہوتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو، وال پیپر، کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، آپ اس دیوار پہ پورا پیپر چمکتی ہوئی گولڈن رنگ کا لگا دیں تو ایک نظر میں لگے گا نا کہ یہ دیوار سونے کی ہے۔ آج یہ چکا چوند، یہ سٹائل آف لیونگ، یہ ویسٹرن سٹائل جس کے اندر دنیا میں لگتا ہے یہ چمکتا ہوا دکھتا ہے، اپنے بچوں کو اس کا کور اتار کے دکھا دیں کہ یہ اندر سے مٹی ہے۔ یہی موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طریقے کی پیروی کریں یہ تو برباد ہو جانا، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی۔ اور وہ اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو، کون سا وقت؟ آپ دیکھیے کہ یہاں پھر ماضی سے عبرت لینے والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی تھی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب یہاں تک موسیٰ کی زندگی کا ایک سبق ختم، بنی اسرائیل آزاد ہو گئے، فرعون ڈوب گیا۔ ذرا آج کی ڈیٹ کی اخبار نکالیے، امیجینیشن میں لائیے، آج 1 جون 2017 اخبار چھپی اور ہائی لائٹ، ہیڈ لائٹ، وہ بڑی سرخی، اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین آ سکتا تھا لوگوں کو؟ کل تک انا ربکم الاعلیٰ کی دعوے کرنے والا، اپنے کنگن اور اپنے جوڑ ایسے دکھاتا تھا لوگوں کو، کنگن تاج بڑا سا تھا اس کی کرسی کے پیچھے، سر پہ اٹھا نہیں سکتا تھا، اس کرسی کے ساتھ تاج لگایا ہوتا، جا کے اس کے اندر اپنا سر کھڑا کر لیتا تھا، اتنا متکبر تھا، اور وہ ڈوب گیا۔ اللہ کو کیا لگے، نہ اللہ کو فوجیں بھیجنی پڑی، نہ اللہ کو کوئی ہتھیار اٹھوانے پڑے، اللہ ایک سیکنڈ میں پانی کی لہروں سے وہ کام کروا لیتا ہے جو بڑے بڑے ویپنز نہیں کر سکتے۔ وہ مسلمانوں تم کام تو کرو، اللہ سے مدد تو مانگو، اور اللہ تعالیٰ نے اس دور سے نکال دیا۔ ابھی تک بنی اسرائیل بڑے اچھے تھے، تبھی اللہ کی مدد آئی، ہم بھی شاید اچھے ہی تھے جب اللہ نے ہمیں آزاد کروایا تھا، آج پھر اچھے ہو جائیں یہ ملک دنیا کا بہترین ملک بن جائے گا۔